ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम छठा स्कंद अध्याय संख्या 17। अध्याय का नाम है माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। श्लोक संख्या 8। प्रायशः प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहसि विभ्रति अयं महावृद्धरो विभर्ति स्त्रियं सदसि स्त्रियं। अनुवाद। प्रायः सामान्य पुरुष भी एकांत में ही अपने पत्नियों का आलिंगन और भोग करते हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े तपस्वी भगवान महादेव परम साधुओं की सभा के बीच अपनी पत्नी को सभों के समक्ष आलिंगन कर रहे हैं। तात्पर्य, महावृद्धरः शब्द का अर्थ ब्रह्मचारी है जो कभी स्खलित नहीं होता। भगवान शिव की गणना श्रेष्ठ योगियों में की जाती है, तो भी उन्होंने साधुओं की सभा में अपनी पत्नी का आलिंगन किया। चित्रकेतु उसकी प्रशंसा करते हैं कि इस स्थिति में भी भगवान शिव अप्रभावित बने रहे, अतः चित्रकेतु ने कोई अपराध नहीं किया। अपना आश्चर्य प्रकट किया। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भागवतम कक्षा में, विशेषकर इस शीतलहर में भी आप सब आए। ऑल ग्लोरी टू असेंबल डिवोटीज। हिम्मत चाहिए और मेहनत की बात है, तो सब जय जयकार हो। और श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से हमें आज ये भागवतम के सुंदर तात्पर्य सुनने को मिल रहे हैं। और ये प्रसंग बहुत ही रोचक और बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही गहरा है। इस अध्याय का नाम है माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। चित्रकेतु एक अच्छे वैष्णव है, अभी उनको भगवान के दर्शन हुए, भगवान से साक्षात बातचीत की है। माता पार्वती वैष्णवी है और शिवजी भी वैष्णव यथाशंभु। इन तीनों के बीच का ये प्रसंग है, शिवजी पार्वती और चित्रकेतु। और ऐसा क्या इन तीनों के बीच में हुआ कि माता पार्वती ने चित्रकेतु को शाप दे दिया, और उस शाप का वर्णन इस भागवतम कथा में चर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंट्रिकेट प्रभुपाद बताते हैं कि इसको चित्रकेतु ने भगवान शिव से के बारे में जो कहा, इस प्रसंग में सुनेंगे, ये बहुत गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रसंग ये है कि जैसे कि पिछले काफी महीनों से हम पढ़ रहे थे, वृतासुर और इंद्र का युद्ध चल रहा था। वृतासुर ने युद्ध के मैदान में इंद्र को दिव्य उपदेश दिए और बहुत ही उसकी गरिमामयी मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद सीधा वो वैकुंठ लोक में गए। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, ऐसा कैसा संभव है कि एक असुर में इतने अच्छे भाव, एक असुर होते हुए उनकी इतनी अच्छी प्रवृत्ति, ये कैसे संभव? तो सुखदेव गोस्वामी ने इनको और विस्तार में बताया। भागवतम में हम कई जगह प्रसंगों में पढ़ते हैं कि जैसे मैत्री मुनि कथा कर रहे हैं, विदुर सुन रहे हैं, सूत गोस्वामी कथा कर रहे हैं, सोनक आदि ऋषि सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। और इन कथाओं में हम सुनते हैं, जहां थोड़ा सा डाउट होता है वक्ता हाथ खड़ा करता है, हाथ तो नहीं खड़ा लिखा भी है लेकिन तुरंत क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि वक्ता इरिटेट हो गया, बस करो, इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो, बस करो, प्रश्न में प्रश्न पूछ लिया। तो वक्ता, और कई बार तो वक्त बताया प्रसंग था कि वक्ता श्रोता का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा। और कथा, यानी कि भागवत कथा में इतना रस है, ना श्रोता थकते हैं ना वक्ता थकते हैं, चलते जाए। जहां प्रश्न होता है और गहराई में, और क्या है, इसका क्या अर्थ हुआ। अब होने को हो सकता था परीक्षित महाराज बोलते बहुत लंबी कथा होगी वृद्धा सुरेंद्र का, चलो ठीक है चले गए, हरिओ चलो, नहीं उन्होंने बोला नहीं, कैसे संभव हुआ, असुर होते हुए इतनी अच्छी भक्ति और इंद्र देवताओं के राजा उससे भी श्रेष्ठ भक्ति कैसे संभव हुआ, इसके बारे में बहुत बताइए। तो तो देखते हैं पूरी भागवतम इस तरह से एक के अंदर एक इस तरह से कथाएं हैं, प्रसंग के अंदर प्रसंग, प्रसंग के अंदर प्रसंग। क्योंकि परीक्षित महाराज ने ये इतनी उत्सुकता से प्रश्न पूछा, क्योंकि परीक्षित महाराज ने इतना ध्यानपूर्वक श्रवण किया और इतनी विनम्रता से प्रश्न पूछे, तभी ये भागवत हमारे सामने उदित हुआ है। और तभी आज हम इतना सुंदर प्रसंग पढ़ेंगे राजा चित्रकेतु किस प्रकार से वृत्तासुर का पूर्व जीवन क्या था। तो फिर परीक्षित महाराज को शुभदेव गोस्वामी ने व्याख्यान किया कि वृत्तासुर पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु थे, जो कि पूरी पृथ्वी के राजा थे, बहुत महान राजा थे, बहुत गौरवशाली राजा थे, और उनकी 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन सभी सभी पांच थी, क्योंकि भगवान की विशेष योजना थी। फिर उनको अंगिरा मुनि के ऋषि से दर्शन हुए, अंगिरा मुनि ने उनको विशेष आशीर्वाद दिया। फिर उनकी सबसे बड़ी रानी कृताद्युति से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, सभी रानियों ने उनसे द्वेष किया, फिर पुत्र की हत्या की और फिर उन्होंने बहुत शोक किया। फिर अंगिरा मुनि वहां पर नारद मुनि के साथ आते हैं, फिर नारद मुनि उस छोटे बच्चे को जीवित करते हैं जिसका नाम था हर्ष शोक, और फिर छोटे बच्चे ने उपदेश दिया। उसने बोला, कौन से माता पिता, किस जीवन के माता पिता की बात कर रहे हो? ये सुनते ही चित्रकेतु की आंखें खुली, और फिर नारद मुनि ने चित्रकेतु को संकर्षण भगवान की स्तुति के लिए एक मंत्र दिया, और फिर चित्रकेतु ने बहुत ध्यानपूर्वक केवल 7 दिनों में ध्यानपूर्वक उस मंत्र का जप करके भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त किए, भगवान से वार्तालाप किए, और फिर भगवान चले गए और राजा चित्रकेतु बने विद्याधर लोक के राजा। तो यहां तक कथा यहां पर पहुंची है कि विद्याधर लोक के राजा चित्रकेतु बन गए हैं। पहले वो पूरी पृथ्वी के राजा थे, अब वो विद्याधर लोक के राजा हैं, और उनको भगवान ने स्वयं एक विमान दिया, भगवान ने एक विमान दिया, और विमान की क्या खासियत थी, बहुत दिव्यमान विमान था। उस विमान में बैठकर राजा चित्रकेतु विद्याधर लोकों में, अलग अलग लोकों में भ्रमण कर रहे हैं अंतरिक्ष में, और साथ में उनकी बहुत सुंदर सुंदर रानियां हैं, और उनके साथ वो भोग कर रहे हैं। कैसा एंजॉय कर रहे हैं? भगवान का गुणगान करते हुए, सुंदर स्त्रियों के बीच में घिरे हुए राजा चित्रकेतु बहुत सुंदर ढंग से भगवान का, यशों का गुणगान कर रहे हैं। उनके पास विमान है जो किसने दिया, स्वयं भगवान ने, और बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े सिद्ध लोक के निवासी और चरण लोक के निवासी उनका गुणगान कर रहे हैं। और उनको भगवान ने यह भी आशीर्वाद दिया कि उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, उनकी इंद्रियां बिल्कुल क्षीण नहीं हो रही थी। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से चित्रकेतु जी बहुत अच्छी स्थिति में थे, स्त्रियों के बीच में घिरे हुए लेकिन बिल्कुल उनसे आकर्षित नहीं हो रहे थे और भगवान का गुणगान कर रहे थे। तो इस तरह से अंतरिक्ष में घूमते घूमते उनका विमान सुमेरु पर्वत की घाटियों में पहुंचा, और सुमेरु पर्वत की घाटियों में उन्होंने क्या देखा, बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि भगवान शिव बैठे हैं सिद्ध लोक और चरण लोक के निवासियों के साथ और भागवत कथा कर रहे हैं। और भागवत कथा कैसे कर रहे हैं, उन्होंने अपनी गोद में अपनी भार्या पार्वती देवी को बिठाया हुआ है और सब साधुओं और ऋषियों के बीच में उनका आलिंगन कर रहे हैं। तो जब ये अद्भुत दृश्य चित्रकेतु ने देखा, आप देखिए कल्पना कीजिए, उस सीन की कल्पना कीजिए, सोचिए आप चित्रकेतु के साथ हैं और चित्रकेतु के साथ बैठे हुए उनके विमान में एक स्त्री वेश में, कैसे भी सारी स्त्रियां हैं चित्रकेतु के विमान में, और विमान भगवान के द्वारा दिया हुआ है, और राजा चित्रकेतु बैठ के भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और नीचे देखते हैं क्या है, शिव जी भी गुणगान कर रहे हैं, वहां सारे संतगण ऋषिगण बैठे हैं, बहुत अच्छे क्या, अरे गोद में कौन बैठी है, गोद में पार्वती माता बैठी है, गोद में ये बैठी है और सब ऋषियों के बीच में आलिंगन कर रहे हैं। अरे देखकर बड़े हैरान हुए, और फिर उन्होंने क्या किया, जोर से हंसे, हंसने के जोर से हंसे, और जोर से हंसने के बाद उन्होंने भगवान शिव के साथ जोक किया, एक कमेंट दिया, जोक किया, अरे क्या है, कैसे है, क्या बोला उन्होंने, वह ऐशा लोक गुरु, ये देखो लोकों के गुरु है, साक्षात धर्म वक्ता, जो साक्षात धर्म के वक्ता हैं, कैसे बैठे हैं, पूरी सभा के बीच में आलिंगन करके बैठे हैं, जटाधर, जटाओं का धार किए हुए, तीव्र तपा, तीव्र तपस्या करने वाले ब्रह्मवादी सभापति, किसके सभापति हैं, ब्रह्मवादियों के, ब्रह्मवादियों का अर्थ है जो बहुत सख्ती से वैदिक नियमों का पालन करते हैं। ये क्या वैदिक कितना सख्ती से पालन कर रहे हैं, देखो भागवतम कथा कर रहे हैं, स्त्री को गोद में बैठा के और सब ब्रह्मवादियों के बीच में आलिंगन करते हुए, तो बात समझ नहीं आ रही थी, ऐसा कर रहे हैं जो पिछले श्लोक में कहा है, गत रही, जैसे बिल्कुल निर्लज व्यक्ति ऐसा करता है, और आज के श्लोक में बता रहे हैं प्रायशः साधारणता क्या होता है, प्राकताश चपि एक बद्ध जीव भी है स्त्रिया रहस्य विवृति, विवृति का अर्थ है आलिंगन करना, प्रायशः साधारणतया एक बद्ध जीव को भी अपने स्त्री का आलिंगन करना है तो कहां जाएगा, रहस्य एक एकांत स्थान में जाएगा जहां कोई और व्यक्ति ना हो, निर्जन स्थान पे जाएगा। साधारणतया एक बहुत ही निर्लज व्यक्ति है उसकी बात छोड़ दो, उसका क्या कहना है, साधारणतया एक बद्ध जीव को अपनी पत्नी का आलिंगन करना है, स्त्री का आलिंगन करना है तो एक निर्जन स्थान में करेगा। लेकिन हम ये क्या देखते हैं, अयम इसको देखो भगवान शिव को महाव्रत धरो, इतने बड़े इन्होंने व्रत इतने बड़े तपस्याओं का पालन किया हुआ है, जहां प्रभुपाद बता रहे हैं महाव्रत धर का अर्थ ऐसे ब्रह्मचारी जो कभी स्खलित नहीं होते, इतने बड़े योगी इनको देखो अयम महाव्रत धरो क्या कर रहे हैं, विभर्ति आलिंगन कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, स्त्रियम अपने स्त्री का सदसी रहस्य में नहीं सदसी में सभा के बीच में, तो ये उन्होंने जोर से हंसकर बोला, एक तरह से बहुत सुंदर कविता गा दी। इस श्लोक में देखें बहुत पोएटिक है ये श्लोक भगवतम का, वहां है रहस्य ये है सदसी, विभ्रति विभ्रति स्त्रियम स्त्रियम, तो आप सोचिए श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव। तो देखिए राजा चित्रकेतु जोर से हंसे और बहुत ही चुटकुला करते हुए शिव जी के साथ परिहास करते हुए ये सुंदर से उन्होंने कविता गा दी, क्या माने आपको, क्या आप लोक गुरु हो, क्या धर्म के वक्ता हो, तीव्र तपस्या करते हो, जटाधारी हो, महाव्रत धर हो, और कैसे सब ब्रह्मवादियों के सभापति हो और ब्रह्मवादियों के बीच में उनकी सभा में स्त्री का आलिंगन कर रहे हो, ऐसा तो एक बदजीव भी नहीं करता, वो भी एकांत में करता है, आप तो सबके बीच में करो, वाह क्या बात है। तो ऐसा बोल दिया और जब बताया गया ऐसे बोला, अब हम अपने भौतिक जगत में देखें एक विमान से कोई नीचे देखेगा तो वैसे ही लोग दिखाई नहीं देते है ना, और ऊपर से कोई बोल तो सकता ही नहीं अगर दिखाई भी दी जाए बाय चांस, और देखेंगे तो नीचे वाला सुन भी सकता नहीं, लेकिन ये विमान बड़ा स्पेशल विमान था, इसमें ऐसा नहीं कोई घर घर आवाज आ रही थी, कोई सुनाई नहीं दे रहा था, बड़े आंख पर हवा उड़ने लगी है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी कि विमान बिल्कुल नॉइसलेस होगा और बड़ा स्मूथ चल रहा होगा फर्स्ट क्लास, और इतने नजदीक आ गए चित्रकेतु एकदम सर के ऊपर ही होगा, और शिवजी ने भी सुना, शिवजी ने सुन के गुस्सा नहीं किया, शिवजी भी मुस्कुराए, दो दोस्तों के बीच में चुटकुला हो रहा है ना, हो सकता है राज चित्रकेतु कर रहे हो देखो मैं भी कथा कर रहा हूं तुम भी कथा कर रहे हो आप भी कथा कर रहे हैं, मैं स्त्रियों के बीच में खिराऊ आप सभा ऋषियों के बीच में खिरे हैं, लेकिन मेरी गोद में कोई स्त्री नहीं आपकी गोद में स्त्री है, वहां क्या बात है, और आपका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा, क्या बात है, क्या स्टाइल है, क्या बात है, और आलिंगन सबके बीच में, एक साधारण व्यक्ति भी आलिंगन करता है एकांत में जाता है और आप भी कहां आलिंगन कर रहे हो, साथ में घटा कर रहे हो, वहां क्या बात है। चित्रकेतु ने ऐसे छुटकला कर दिया और शिवजी ने देखा, शिवजी भी हंस पड़े और शिवजी हंस पड़े, सारे ऋषिगण भी हंस पड़े, वाह क्या बात है, लेकिन जोर से हंसे, जोर से हंसने के बाद जब शिवजी को कोई गुस्सा नहीं आया, उनके साथ साथ जो बड़े ऋषि को भी गुस्सा नहीं आया, लेकिन साथ में पार्वती माता बैठे थे, पार्वती माता को बहुत बुरा लगा, मेरे पति का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो फिर पार्वती माता ने उनको श्राप दे दिया। पार्वती माता ने सोचा है कल के बच्चे हो, अभी भी भगवान के दर्शन क्या हो गए, बहुत दिमाग खराब हो गया, दर्शन ही हो गए ना भगवान के, क्या समझते क्या हो अपने आप को, हाँ इस संसार में शिवजी से ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, जैसे मर्जी वो कथा करें, तुम्हें क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है, तुम क्या समझते क्या हो अपने आप को, हाँ उन्होंने तुरंत उनको श्राप दे दिया, तुम असुर योनि में जाओ। तो वो इसके बाद फिर बताते हैं आगे कि फिर चित्रकेतु जो विमान से उतरते हैं और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं और बहुत विनम्रता से उस श्राप को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस अध्याय में हालांकि माता पार्वती ने चित्रकेतु जी को श्राप दिया, लेकिन हम देखते हैं अंत में चित्रकेतु जी का गुणगान होता है, भगवान शिव उनका गुणगान करते हैं भक्तों का, और शिव जी भगवान का गुणगान करते हैं, अंततः इस अध्याय गुणगान में ही समाप्त होता है भक्तों के और भक्तों के ईष्ट भगवान के। तो हम देख सकते हैं शिल प्रभुपाद विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर जी को कोट करते हुए बताते हैं ये वास्तव में भगवान की योजना थी, क्योंकि चित्रकेतु जी भी एक महान वैष्णव थे, उनको भगवान के दर्शन हुए, ये नहीं कि उन्होंने तमोगुण के प्रभाव में आके ऐसा कमेंट कर दिया, भगवत गीता में बताया गया है, कमेंट करना या किसी की इंसल्ट करना, अपमान करना, ये तमोगुण का लक्षण है। ऐसा नहीं कि राजचित्र केतु तमोगुण के प्रभाव में थे और उन्होंने शिवजी का अपमान कर दिया, ऐसा नहीं था। और ऐसा भी नहीं था, हम देखते हैं कि यहां पे माता पार्वती ने श्राप दे दिया। तो ये वास्तव में भगवान की योजना थी। भगवान की क्या योजना थी कि भगवान चाहते थे कि राजा चित्रकेतु जल्दी से जल्दी वैकुंठ लोक वापस आए, जल्दी से जल्दी वैकुंठ लोक वापस आए। और भगवान अगर जल्दी से जल्दी ही राजा चित्रकेतु को वैकुंठ लोक वापस लाना चाहते थे तो क्या करवाया, पार्वती माता से श्राप दिला के अश्व मुनि में डलवा दिया। ये बड़ा अजीब तरीका है भगवान का। भगवान गीता में कहते हैं कौन ते पति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति, मैं गारंटी ऐलान कर दूं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। और ये राज जाकर ही बताया जाए कि उन्हीं मिली होने में नहीं जाएगा। लेकिन यहां तो राजा चित्रकेतु के यहां विद्याधर लोक के पति थे, स्वामी थे, और उनको असुर बनना पड़ गया। बहुत अजीब सी बात है, लेकिन भगवान की योजना है जो कि अचिंत्य है। श्री अजीब गोस्वामी पाद बताते हैं जब तक भगवान के कार्यकलापों को हम अचिंत्य नहीं मानेंगे हम उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। अगर हम भगवान के क्रियाकलापों की व्याख्या करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनको अचिंत्य मानना पड़ेगा। और कई बड़ी भगवान की योजनाएं, भगवान के क्रियाकलाप बहुत विरोधाभासी लगते हैं, कंट्राडिक्टरी लगते हैं। एक तरह से भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं और दूसरे से अपने ही भक्त को असुर योनि में डलवा रहे हैं, कंट्राडिक्टरी है। लेकिन भगवान की जो कंट्राडिक्शनरी जो योजनाएं होती हैं इसके पीछे बहुत बड़ी योजना होती है, एक ग्रेटर प्लान होता है, कोई समझ नहीं सकता। इसी ढंग से हम देखते हैं जब चार कुमार वैकुंठ लोक में प्रवेश करने वाले थे तो उनको किन्होंने रोका, वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय और विजय ने। जय और विजय भी वैकुंठ लोक में है तो देहात्म चेतना से बिल्कुल ऊपर है। उन्होंने देखा कि 5 साल के नंगे बालक वैकुंठ लोक में प्रवेश कर रहे हैं, कहां से आ गए नंगे बालक, अरे रुको, रोक दिया। और उन्होंने चार कुमारों का, उनको लगा उन्होंने अपमान किया, और चार कुमारों को भी रोष आ गया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया, जो कि ऐसा साधारणतः होता नहीं है। वो भी ब्रह्मवादी थे, संभाव थे, अगर कोई उनका अपमान नहीं करता बड़ी आसानी से वो सहन कर सकते थे, लेकिन उनको भी श्राप दे दिया। इसके पीछे भी भगवान की योजना थी। भगवान अपने ही द्वारपालों को असुर योनि में भेजना चाहते थे। कैसी योजना है, बिल्कुल कंट्राडिक्टरी लग रही है, लेकिन इसके पीछे एक ग्रेटर प्लान है, एक बड़ा प्लान है। ऐसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, परम वैष्णव थे, जिनको भगवान ने मां के घर में ही दर्शन दे दिए। परीक्षित महाराज को भगवान चाहते थे वैकुंठ लोक में वापस आओ, क्या करवा दिया उनसे, शमी ऋषि के प्रति अपमान करा दिया, और श्रृंगी जो ब्राह्मण थे उसके मुख से एक श्राप निकलवा दिया कि 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो। परीक्षित महाराज को लगा ये तो बहुत अच्छा हो गया, फटाफट में वाइंड अप करके जाऊंगा। उन्होंने कोई दोबारा श्राप नहीं दिया क्योंकि ये भगवान की योजना थी। तो भगवान अपने भक्तों की इस प्रकार भी रक्षा करते हैं, उनको असुर योनि में डलवाकर भगवान चाहते जल्दी से वापस आओ। तो इसलिए ये पूरा का पूरा प्लान है। हम भी प्रभुपाद बताते हैं इसमें कि एक शाप का उपयोग हुआ वैकुंठ लोक वापस जाने के लिए। साधारणतया शाप का अर्थ होता है कि आपका बुरा हो, लेकिन पार्वती माता ने जो कि एक वैष्णव ही है एक वैष्णव को श्राप दिया, लेकिन ये सारा भगवान की योजना के अंतर्गत था। और इस श्राप के माध्यम से चित्रकेतु राजा बहुत शीघ्र ही वैकुंठ लोक वापस चले गए। तो आप बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, चित्रकेतु महाराज ने चुटकला किया, एक जोक कसा, एक परम वैष्णव शिवजी के प्रति, उससे उनको श्राप मिला और वो वैकुंठ लोक वापस चले गए। हमारी भी आदत है कुछ मजाक करने की, कमेंट मारने की, अब तो हम खुलेआम किसी बड़े से बड़े वैष्णव को पकड़ेंगे और उनको आराम से उनके ऊपर चुटकला करेंगे, वो हमें श्राप देंगे और वैकुंठ लोक चले जाएंगे। नहीं, अगर हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी भगवान की और भक्तों की दिव्य लीला को समझने के 3 स्तर होते हैं। एक स्तर तो होता है दिव्य स्तर, ये भगवान की योजना है, अचिंत्य है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते और ना ही सोचने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा स्तर होता है आध्यात्मिक स्तर, कि मेरे लिए इस लीला से मुझे क्या सीखना है, अपने जीवन में क्या अपने जीवन में बताना है। और तीसरा है अधिभौतिक स्तर, दूसरे जीवों को हम इसमें क्या प्रचार कर सकते हैं इस लीला से। तो दिव्य स्तर तो हुआ ठीक है, ये तो भगवान की योजना है, भगवान की हमारे लिए अलग योजना होगी, इन देवी पुरुषों के लिए एक अलग योजना है, ये हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक और अधिभौतिक स्तर पे हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि इस लीला से हम क्या सीख सकते हैं, क्या अपने जीवन में उतार सकते हैं। और ये बहुत इंट्रिकेट और बहुत गहरी लीला है, इसमें बहुत से आगे हम पढ़ेंगे प्रभुपाद के जो परपट से हैं, इसमें बहुत गहरे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक हमें समझने पड़ेंगे, क्योंकि इसे थोड़ी सी गलत समझ हो गई तो हम गलत निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, है ना। हम देखते हैं कि शिव जी है वैष्णव नाम यथा शंभु योगीश्वर, जो कि बहुत तपस्या करने वाले, और माता पार्वती और राजा चित्रकेतु। अब इस पूरे प्रसंग में आप बताइए कि शिवजी, पार्वती और चित्रकेतु किसके, किनके द्वारा वैष्णव सदाचार का खंडन हुआ, किसने वैष्णव सदाचार का उल्लंघन किया? चित्रकेतु ने, माता पार्वती ने, शिवजी ने? क्या शिवजी के लिए ये उचित था कि माता पार्वती को, शिवजी महाजन है, उनको, माता पार्वती को अपने जंगा में बिठाकर, गोद में बिठाकर सब ऋषियों के बीच में कथा कर रहे हैं, क्या ये वैष्णव सदाचार का उल्लंघन नहीं था? क्या माता पार्वती को इस तरह से श्राप देना चाहिए था? क्या राजा चित्रकेतु को इस प्रकार से जोर से हंस के कमेंट मारना चाहिए था? क्या कहते हैं आप, किसने उल्लंघन किया? है ना, बड़ा पेचीदा सा सवाल है। सब अपनी जगह ठीक है, क्योंकि तो भगवान की योजना के अंतर्गत है, ऐसा नहीं है कि कोई सब प्रकृति के तीन गुणों के अंदर आकर ऐसा व्यवहार कर रहे थे, सब भगवान की दिव्य योजना थी। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि इस तरह पे आकर के हम कैसे समझें और अपने जीवन में से हम क्या करें, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हो सकता है हम अपने से किसी वरिष्ठ वैष्णव को बहुत ही उल्टे सीधे कार्य करते हुए देखें, है ना। आप नए नए जुड़े हैं और आप पीवीआर में घूम रहे हैं, उन्होंने देखा कि आपको जिन्होंने प्रीच किया, एक बड़े से प्रभु जी, वो भी पीवीआर के बीच में से निकल रहे हैं पॉपकॉर्न खाते हुए। अरे ये क्या हो गया भाई, अरे ये कैसे समझे, हो सकते बोला कि मैं ऐसा कुछ हो सकता है, तो आपने बोले ये कोई दिव्य योजना है भगवान की, कोई दिव्य योजना है, कोई दिव्य योजना प्लान है कुछ ऐसे, तो कुछ ऐसा नहीं है, तो हमें समझना पड़ेगा अपने लिए। कई बार हम देख लेते हैं कि अपने से वरिष्ठ भक्तों को कुछ ऐसा कार्य करते हुए जो हमें समझ में नहीं आता, या फिर अपने इक्वल्स को या अपने से जूनियर को भी, तो फिर कैसे हम इसको डील करें? तो आज अगर चित्रकेतु के पक्ष को हम लेते हैं, आगे वाले श्लोक में माता पार्वती, शिव जी, बहुत विस्तार में प्रभुपाद जी ने अलग अलग तरीकों से इसकी चर्चा की है। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजा चित्रकेतु जोर से हंसे, वैष्णव सदाचार के अनुसार ये ठीक नहीं है। आपने किसी भक्तों से देखा, कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग, हम यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावामृत संघ है, अलग अलग बैकग्राउंड से भक्त लोग आते हैं, है ना, कोई गांव से, कोई शहर से, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई विदेशों से, अलग अलग कल्चर है सबका, तो सबके अलग अलग खाने की आदतें हैं, अलग अलग सोने की आदतें हैं, अलग अलग चलने की, अलग अलग बात करने की आदतें हैं। तो कई बार हो सकता है किसी की बहुत हास्यप्रद आदतें हों, कई बार ऐसा होता है विशेष करके ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, बड़े बड़े हास्यप्रद प्रसंग हो जाते हैं, किसी भक्त को देख एक नेचुरली एक ऐसा स्वभाव सा ही होता है कि जितने से वो बातचीत करते हैं, जितने से वो चलते हैं, जितने से खाते हैं, एक अलग ही यूनिक से उनके आदतें होती हैं कई बार, तो कई डिटेल में नहीं बता सकते, कभी बड़ी यूनिक निकालते तो बड़ा अच्छा लगता है कई बार, तो उसमें भी क्या करें, तो इस जंग से जोर से हा 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 करके जोर से हंसे, तो वो एक तरह से एक वैष्णव सदाचार का उल्लंघन होता है ना। तो उन्होंने जोर से हंसे और ऐसी जितनी जोर से बोले कि अगर सुनोड़े कुछ बोलना में था तो आराम से बोल सकते थे, इतनी जोर से बोले कि माता पार्वती ने सुन लिया, जिनसे उनको वो अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने फिर चित्रकेतु जी को श्राप दे दिया। तो हम ऐसी परिस्थितियों से कैसे बचे, है ना। तो जोर से हम हंसते हैं, देखते हैं रूप गोस्वामी जी की लीला में हम देखते हैं, वो तो लीला स्मरण कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपस में व्यंग कर रहे थे, उसको देखकर लीला को दर्शन हुए और रूप गोस्वामी थोड़े से मुस्कुराए। तो एक वहां से जो वैष्णव जा रहे थे, जो कि शारीरिक दृष्टि से इतने अपंग थे, तो उन्होंने कहा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो उन्होंने इसको अपमान ले लिया और रूप गोस्वामी जी का जो लीला दर्शन था वो भंग हो गया। तो इस वजह से हम देखते हैं कि वैष्णव के बीच में व्यवहार करते हुए बहुत सजग होना चाहिए, बहुत सजग होना चाहिए ना। भक्तों के बीच में विशेषकर एक साधक को स्पॉन्टेनिटी, जिसे कहते हैं ना स्पॉन्टेनिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, जो हमारा स्वाभाविक, स्वाभाविक हमारा क्या होता है जब हम इस भौतिक जगत में है, स्वाभाविक का अर्थ है प्रकृति के तीन गुणों के अंदर, हमारे स्वाभाविक प्रकृति के तीन गुणों से कंट्रोल्ड है, तो स्वाभाविक जो हमारा रिएक्शन होता है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। कोई हासी परिस्थिति है तुरंत यानी कि वैष्णव बीच में जोर से हंसना शुरू कर देना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक जो है वो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है हमारे पे। तो हालांकि रूप गोस्वामी जी ने उनको देखकर हंसे नहीं थे, वो तो भगवान की लीला को देखकर हंस रहे थे, लेकिन फिर भी उस वैष्णव ने इसको अपराध के रूप में लिया और रूप गोस्वामी जी की लीला भंग हो गई। हम लोगों की क्या स्थिति होगी, हम तो लीला के दर्शन भी नहीं होते है ना, इसलिए हमारे नाम में रुचि उत्पन्न नहीं होती कि हमें छोटी बातों को ध्यान नहीं देते। भक्ति करने का अर्थ यानी कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट अच्छे ढंग से करें, भक्ति करने का अर्थ है कि छोटी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक करें। तो इस ढंग से जोर से हंसे, ऐसे देखते हैं जोर से हंसने के लिए महाभारत में भी देखते हैं कि कृष्ण की योजना के अनुसार ही जब इंद्रप्रस्थ में बहुत सुंदर तरीके से माया दानव के अनुसार बहुत सुंदर उन्होंने अपना एक महल बनाया था, तो जब दुर्योधन आए तो दुर्योधन ये जान नहीं पा रहे कि पृथ्वी की पानी है, तो उनको बार बार ये भ्रम हो रहा था, तो माता द्रौपदी जोर से हंसी थी और इसी जोर से हंसने के कारण दुर्योधन इतना अपमानित महसूस किया और अपमान किया कि महाभारत का युद्ध हुआ। हालांकि कृष्ण ने उनका बहुत उत्साह बढ़ाया माता द्रौपदी को हंसने के लिए, क्योंकि वो भगवान की योजना थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि जोर से हंसना विशेषकर वैष्णवों के बीच में बहुत हमारे लिए संकटदायक हो सकता है, तो अगर ऐसी परिस्थिति आती भी है तो हमें अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। और दूसरा हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं किसी वरिष्ठ वैष्णव को और हमें देखते हैं उनका व्यवहार में कुछ गड़बड़ नजर आती है तो कैसे देखना चाहिए। तो हमारे पास शास्त्रों में कई ऐसे प्रसंग हैं, जैसे कि चैतन्य लीला में देखते हैं कि प्रद्युम्न मिश्र एक ब्राह्मण थे जो कि चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही पतित एक ग्रस्त हूं, मेरी मृत्यु में डूबा हुआ हूं, कृपया करके आप मेरे पर उद्धार कीजिए और मुझे कुछ भागवत कथा सुनाइए। तो जब चैतन्य महाप्रभु बोला नहीं, अरे मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं जो कुछ सुनता हूं रामानंद राय जी से सुनता हूं, आप उनके पास जाइए। तो प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय जी के पास गए, तो जब रामानंद राय जी के पास गए तो उनके सेवक उनको बिठाया, बोले रामानंद राय जी कहां पे हैं? वो बोला कि दो देवदासियों को जो कि बहुत युवती हैं और बहुत ही सुंदर हैं उनको उनका श्रृंगार कर रहे हैं और उनको उन्होंने जगन्नाथ वल्लभ नाटिका एक लिखा है उसकी तरह तरह भाव भंगिमा सिखा रहे हैं। तो रामानंद राय उन युवतियों को स्वयं स्नान करा रहे थे, उनके शरीर पर तेल की मसाज कर रहे थे और उनका श्रृंगार करके उनको भाव भंगिमा सिखा रहे थे और प्रद्युम्न प्रतीक्षा करते रहे। काफी समय के बाद जब रामानंद राय आए तो रामानंद राय जी ने उनको प्रणाम किया और बोला मुझे क्षमा करना, मुझे अभी मालूम चला कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो ये सब सुनकर प्रद्युम्न ऋषि बिल्कुल भ्रमित तो थे, बोले चलते हैं बाद में बात करेंगे है ना। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, अरे पकड़ लिया आज तुम्हें, पकड़ लिया रंगे हाथ पकड़े गए, बहुत बड़े स्वामी बनते हो हैं, देखो रंगे हाथ पकड़े गए, और कोई नहीं मिला, युवतियों को मसाज कर रहे हो, सब जानता हूं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने देखा अजीब सी बात है, चुपचाप चले गए। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु पूछा हाँ आपने सुना भागवत कथा, उन्होंने सब कुछ बता दिया कि क्या भागवत कथा सुनी, ऐसा सब सुनने को मिला मुझे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जोर से हंसे, बोले केवल रामानंद राय ही कर सकते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि रामानंद की क्या दिव्य स्थिति है, उन्होंने बोला कि उनका शरीर भौतिक नहीं आध्यात्मिक है, मैं तो अगर स्त्री का दर्शन क्या स्त्री का नाम सुन लूं मेरा मन और मेरा शरीर बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, तो ये केवल रामानंद राय ही कर सकते हैं। जब रामानंद की दिव्य स्थिति को उन्होंने सुना उसके बाद फिर अगले दिन चैतन्य महाप्रभु के अंदर दोबारा से गए और फिर उन्होंने उनसे भागवत संदेश प्राप्त किया। तो अगर हमें ऐसा अपने किसी वरिष्ठ सन्यासी में या वरिष्ठ भक्त में ऐसी कुछ बातें दिखाई देती हैं कि मालूम चले या हम सुने के चार नियमों को भंग कर रहे हैं या सही ढंग से आचरण नहीं कर रहे हैं, तो हमें तुरंत निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाना चाहिए, चेक रीचेक क्रॉस चेक, किसी और वरिष्ठ भक्त के पास जाकर हम इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि इसका क्या हम इसको हम कैसे समझे। दूसरा हम देखते हैं जैसे गदाधर पंडित मुकुंद के साथ गए थे पुंडरीक विद्यानिधि के पास, देखा पुंडरीक विद्यानिधि बहुत एक आलीशान आश्रम में बैठे हैं ना, रेशमी कपड़े डाले हुए हैं, सुगंधित तेल लगाया हुआ है, बास पास उनके सेवकों को चामर कर रहे हैं और पीकदान है और पान खा के थूक रहे हैं उसमें। गदाधर पंडित जी बोले कहां मुझे ले आया है। मुकुंद ने बोला था एक परम वैष्णव के दर्शन कराऊंगा। परम वैष्णव तो बिल्कुल विषय लगते हैं, लेकिन एक संदेह उत्पन्न हो रहा था, कुछ बोले नहीं, संदेह था। साथ में उनके साथ मुकुंद थे, वो समझ गए। तो उन्होंने मुकुंद ने श्रीमद भागवतम से एक श्लोक उद्धृत किया, यत्स्तान कल कालकूटम। उन्होंने भगवान के दया का गुणगान करते हुए किस तरह से उन्होंने पूतना के ऊपर दया की थी उस श्लोक को बोला। और देखते हैं कि फिर पुंडे के अंदर सारे के सारे अष्टसात्विक विकार उत्पन्न हो गए। तो ये देखते ही गदाधर पंडित को लगा कि वो कितना बड़ा अपराध कर रहे थे, और इस अपराध का निवारण करने के लिए उन्होंने बाद में पंडित विद्यानंद से दीक्षा ली। हालांकि उन्होंने मानसिक स्तर पर उनसे अपराध हुआ था। फिर से हम देख सकते हैं कि जब हम किसी वरिष्ठ व्यक्ति में ऐसा कुछ आचरण देखें जो कि हमें शास्त्रों के अनुसार नहीं लगता, तो तुरंत हमें निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि भक्त लोग ने बड़ा अच्छा सेमिनार दिया आर्ट ऑफ अटेंटिव चैंटिंग, और अगले दिन देखते हैं जब में वही भक्त सो रहे हैं, बोले रहे प्रभु जी क्या बात है, आर्ट ऑफ अटेंटिव चैंटिंग बढ़िया, बोलना तो बड़ा आसान है। तो ऐसे ही हुआ एक बार वृंदावन में हिजोरी ने सत्सरू गोस्वामी महाराज है ना बैठ के जब कर रहे थे, और जब करते करते शायद उनको थोड़ा सा ऐसे आंखें बंद हो गई, साथ में एक नए नए भक्त थे है ना, उन्होंने बोला हरिबोल प्रभु हरिबोल उनको जगा दिया। तो वो जाग गए, तो उन्होंने अपमान कर दिया। बाद में सत्सरू महाराज बड़े इंट्रोस्पेक्टिव भक्त, उन्होंने सोचा कि बात तो गलत है, मैं सो गया जब के बीच में। फिर उन्होंने पुस्तक लिखी जपा रिफॉर्म बुक है ना, और जिस भक्त ने उनको जगाया था हम जानते हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, वो यहीं पे थे पंजाबी बाग में थे कुछ समय पहले, बता रहे देखो कि मैं ही वो भक्त था जिन्होंने जगाया था। तो अभी तक जिस भक्त ने जगाया था कहना नहीं चाहिए उनका, जब तो भाई उसी स्तर का ही है, लेकिन सत्सरू महाराज जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने जपा रिफॉर्म बुक भी लिखी, उनसे कितने भक्तों का उद्धार हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि हम भी किसी को ऐसे छेड़ते रहे, तो बहुत सावधान होकर हमें ये देखना चाहिए, तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो भौतिक बुद्धि होती है हमें तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए उत्तेजित कर दिया है, क्योंकि इससे हमारी जो फॉल्स ही हुआ झूठा अहंकार संतुष्ट होता है, पकड़े गए ये श्रेष्ठ नहीं है मैं श्रेष्ठ हूं, ये झूठा दिखावा करते हैं, हमें बहुत संतुष्टि मिलती है किसी को नीचे गिरते हुए देखकर, ये किसी का बुरी क्वालिटीज देखकर हमें बहुत संतुष्टि मिलती है, हमें ये जैसे कहते हैं एक अंदर से हमारा अहंकार बढ़ता है, देखो मैं इनसे श्रेष्ठ हूं। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जब कोई, इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने से वरिष्ठ भक्तों के बीच में कुछ ऐसा दिखाई दे तब हमें बड़ा सावधान होना चाहिए। अगर हमारे से कोई कनिष्ठ भी है, जूनियर भक्त भी है, उनके साथ भी हमें बड़ा सावधानी से व्यवहार करना चाहिए, बहुत सावधानी से। ये कमेंट किसी को करना, किसी को रिमार्क मारना, किसी पर व्यंग करना बहुत खतरनाक है। ये नहीं कि चलो वरिष्ठ भक्तों के तो सावधान रहे, जूनियर में तो उसको ऐसे ही चुबाते रहे, पीनी यहां से मारे वहां से मारे, छेड़ते रहे उसके साथ मजाक करते रहे कि अभी भी आया खेल लो उसके साथ है ना, ऐसा नहीं। उनके साथ भी हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत। जैसे श्री प्रभुपाद जी को देखते हैं, प्रभुपाद अपने जो शिष्य थे जो कि बिल्कुल नौसिखिया थे, उनको बहुत सावधानी से करेक्ट करते थे। करेक्शन करना भी एक आर्ट है ना, देखते हैं कौन कितना सरेंडर्ड है, कितना शरणागत है, उसी के हिसाब से उसको करेक्शन किया जाता था। जैसे प्रभुपाद जब भारत में वापस आए तो उनके साथ अच्युतानंद आए, अच्युतानंद जो बाद में सन्यासी बने थे, उनके साथ अच्युतानंद के साथ उनका एक अच्युतानंद जी का एक मित्र था जिसका नाम था रामानुजन, उन्होंने भी दीक्षा ले रखी थी, लेकिन रामानुजन था, इन्होंने दीक्षा तो ले ली थी लेकिन ज्यादा शरणागत नहीं थे, और इन्होंने बहुत लंबी दाढ़ी रखी हुई थी है ना। और प्रभुपाद जहां भी हाउस प्रोग्राम में जाते थे अच्युतानंद प्रभु भी जाते थे, रामानुज प्रभु भी जाते थे, और सब लोग देखते थे इस कॉल में पहले एक व्यक्ति है जो इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, प्रभुपाद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। प्रभुपाद ने कभी उनको बुला के डायरेक्ट नहीं बोला, क्योंकि जानते थे मानेगा नहीं, सरेंडर नहीं है। तो प्रभुपाद ने अच्युतानंद प्रभु बोला, इसको बोलो आपके मित्र को क्यों दाढ़ी रखते हैं। तो अच्युतानंद ने बोला उनको कि आप क्यों दाढ़ी रखते हो, कटवा दो। कहते नहीं मुझे अच्छा लगता है, मैं तो रखूंगा। तो रखे रहे, काफी समय बीत गया ऐसे। फिर प्रभुपाद सोचे कैसे इसको किया जाए। एक बार भगवत दर्शन पत्रिका आई जिसमें एक आर्टिकल आया कि किस ढंग से हरिदास ठाकुर जी ने एक वैश्य का उद्धार किया, तो वहां पर एक चित्र था। तो पवन रामानुजी को बुलाया, देखो इसको क्या समझ आता है तुम्हें। उन्होंने देखा, बोले देखिए किस ढंग से एक वैश्य भी वैष्णवी बन गई। बोले और देखो क्या समझ में आता है, ये तो ठीक है। और देख सकते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर कितने महान वैष्णव है, ठीक तो है और क्या समझ में आया, और देखो और क्या समझो, देखियो हरिनाम की महिमा है, देखिए बोले वो तो बात सब ठीक है, बोलो और क्या समझ में आया, फिर उन्होंने देखा बोले हाँ ये जो वैश्य है ये क्लीन शेप्ड है, बोले हाँ ये समझ में आया कि वैश्य भी क्लीन शेप हो गए, बोला अच्छा तो प्रभात आप चाहते हैं मैं भी क्लीन शेप हो जाऊं, प्रभात बहुत अच्छा होगा क्लीन शेप हो जाओ, तो उसके फिर उन्होंने दाढ़ी कटा। तो इस ढंग से प्रभात करेक्ट करते थे, है ना, तो देखते थे कि प्रभात किसी का भी प्रभात देखते थे कि इस संसार में बहुत ही जगत में हर एक जो अहंकार है बहुत बड़ा हुआ है, तो ऐसे ही अनावश्यक किसी के अहंकार को हमें ठोस नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हालांकि गुरु का कार्य होता है कि सबके अहंकार को काटता रहे, लेकिन ऐसा नहीं है वो बस एक चॉपर लेके फेंक कर सबका अहंकार काटता रहेगा, मशीन है उसके पास, है ना, मतलब कि अगर सारा दृष्टि में देखो तो एक नाई भी बाल उसी के काटता है जो उसको शनागत करता है, नाई के पास जाते हैं सर झुकाते हैं बोले यहां करो यहां करो यहां करो, तभी उस तरह चलाता है, नहीं उस तरह लेके मार्केट में घूम रहा है सबके बाल काटे जाते हैं ना, तो कई बार हम समझते हैं नहीं अब हम प्रचारक बन गए, अब हम लीडर बन गए, हमारे पास अधिकार मिल गया अहंकार काटने का, है ना, जो कोई मिल रहा खटाखट काटे जा रहे हैं, नहीं बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी के भी अहंकार को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, ना हो जाते हैं हमारे पास, सोलह माला का जप करते हैं, चाने का पालन करते हैं, दीक्षा हो गई, ब्राह्मण दीक्षा हो गई, प्रवचन देते हैं, श्लोक याद हो गए, अब हम कोई भी व्यक्ति किसी को देखते हैं निकृष्ट देखते हैं, क्या सिगरेट पीते हो यार, क्या है कुत्तों वाला जीवन है तुम्हारा, क्या बेवकूफ गधे की तरह काम करते हैं, ऐसे हम करते रहते हैं, होता है कई बार ये बहुत गलत है, बहुत सावधानी से डीलिंग करना चाहिए, जो नए भक्त भी हैं, जैसे प्रभुपाद जी जब सैन फ्रांसिस्को में थे और मालती माता उनके लिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा लेके आई थी, तो प्रभुपाद जी ने फिर अपने उनके मालती माता को बोला कि अपने पति श्याम सुंदर को बोलिए, वो कारपेंटर काम जानते कि बड़े बड़े विग्रह बनाए, तो श्याम सुंदर को वो बड़े बड़े विग्रह बना रहे थे, आप सुने प्रसंग सुना होगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो जब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए प्रभुपाद देखने गए तो क्या कर रहे थे श्याम सुंदर प्रभु, सिगरेट पीते पीते आराम से करा रहे थे, और सोचिए प्रभुपाद को कैसा लगा होगा, और सिगरेट पीते पीते कहां रहे जगन्नाथ जी के सर के ऊपर, कैसा लगा होगा प्रभुपाद जी को देखिए आप, है ना, प्रभुपाद जी उनको ये नहीं देखा ए बेवकूफ क्या कर रहे हट यहां से पागल कहीं का, चल डांटा नहीं उसको मारा नहीं कुछ, बड़े आराम से देखा, वेरी गुड फिर बोला क्या व्हाई आर यू अलाउइंग दिस स्मॉल पीस ऑफ सिगरेट टू कम बिटवीन यू एंड कृष्ण, क्यों ऐसा कर रहे हो अपने और कृष्ण के बीच में, क्यों छोटी सी सिगरेट ला रहे हो, बस इतना बोला श्याम सुंदर कहते हैं अभी तक वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं, और उसके बाद बोले कि उसके बाद वो लास्ट सिगरेट थी उसके बाद कभी सिगरेट नहीं पिए, है ना, तो ये एक तरीका, अब हम किसी को कमेंट दे भी रहे हैं करेक्शन कर भी रहे हैं तो उसका अर्थ ये होना चाहिए कि ये भगवान को शरणागत हो, अगर वो डांट देते हो क्या हो जाते भगवान के शरणागत, है ना, तो कभी हमें ये नहीं समझा कि हमें कोई रिमार्क मारने का या कमेंट मारने का अधिकार प्राप्त हो गया है, ये बहुत बहुत हानिकारक है हमारी भक्ति के लिए, चाहे किसी भी स्तर का कोई भक्त क्यों ना हो, हमें बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए, और जब प्रभुपाद को किसी की ईगो काटनी होती थी तो सरेआम पब्लिक के बीच में काटते थे, इस ढंग से काटते थे कि भक्त पानी पानी हो जाता था बिल्कुल, है ना, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, तो एक बार तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज जब बॉम्बे का बड़ा वो चल रहा था, मिस्टर नैयर प्रभुपाद जी को धोखा दे रहे थे काफी, तो कोर्ट केस चल रहा था, तो प्रभुपाद जी के साथ वो साउथ इंडिया में गए, तभी वहां से फोन आया कि हम लोग केस जीत गए हैं और डीड साइन करना है बस, है ना, और केस हमारे फेवर में हो गया, तो प्रभुपाद महाराज ठीक है तो सब कुछ हो गया, तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज को भेजा आप जाओ डीड साइन करो, वहां पर गए तो मिस्टर नैयर ने वकील को पैसे वैसे दिलाकर उनका दिमाग खराब कर दिया, वकील ने तमालकृष्ण महाराज को बोला कि ये डीड कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साइनमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है, तमालकृष्ण महाराज उनकी बातों में आ गए, ऐसे वापस आ गए, प्रभुपाद बोला कोई डीड को ठीक नहीं थे, प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया, बोले सर उसने सब चीटिंग किया, बाद में वो बॉम्बे वापिस आए, प्रभुपाद सब वीआईपीस को बुलाया था डोनर्स के बीच में, सबको दर्शन दे रहे थे, तमालकृष्ण को बुलाया यहाँ पे, बोला ही इज माई अमेरिकन डिसाइपल ही इज द ग्रेटेस्ट फूल, सबके बीच में आप सोचिए क्या हालत हुई होगी, सबके बीच में बाहर के मेरी भक्तों के बीच में डोनर्स के बीच में बुलाकर उसके इनको इंट्रोड्यूस कर, इज माई अमेरिकन डिसाइपल इज माई ग्रेटेस्ट फूल, तो बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसिस में प्रभुपाद ऐसा करते थे, किसी के ईगो को ऐसे काटना है, देखते हुए कि वो कितना शरणागत है, लेकिन हमें ऐसे किसी के ऊपर कैजुअल ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया जूनियर सीनियर का, और सीनियर भी जूनियर, और सबसे ज्यादा कमेंट मैजिक इसमें होती है इक्वल्स के बीच में, तो ये बहुत खतरनाक होता है, ये मित्रता का लक्षण नहीं है। कई मैं सोचते हैं हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ा अच्छा हमारा प्रेम है आपस में, तो वो ठीक नहीं है। अक्सर हम देखते हैं इस ढंग से हम जब कमेंट्स करते हैं दूसरे के ऊपर तो प्रजल्पा होता है, और प्रजल्पा भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है ना। कई बार हम देखते हैं कोई भक्त हो सकता है उनकी साधना इतनी अच्छी ना हो, है ना, और दूसरे भक्त की साधना बड़ी अच्छी हो, उसकी अपने सोलह वाला होगी, फर्स्ट क्लास हो गया, बस हो गया, हम क्या करो है, तो फिर दूसरे भक्तों को कमेंट मारते हैं, ओ उठ गए कैसे हो, है ना। तो कभी नजर आ गए वो बेचारे मॉर्निंग में, तो उसको ना अलग अलग से उसको सरकास्टिक कमेंट्स दिए गए, तो ठीक नहीं है, बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं मंगल आरती में आ रहा हूं और जो मंगल आरती में नहीं आ रहा मैं उससे श्रेष्ठ मांगता हूं, ऐसा नहीं है। कई बार मेरी आदत पड़ जाती है जल्दी उठने की, इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट, कई बार हैबिट हो जाती है कि कोई जल्दी उठ के आ सकता है, कोई जल्दी नहीं उठ पाता। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो नहीं उठ पाया, जो मंगल आरती नहीं आ पाया वो निकृष्ट है, मैं श्रेष्ठ हूं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो मंगल आरती में नहीं आती वो निश्चित रूप से श्रेष्ठ भक्त है। ये भी हमें एक्सक्यूज नहीं लेना चाहिए कि मेरी तो आप आदत थोड़ी सी खराब है लेकिन मैं बहुत श्रेष्ठ भक्त हूं, ये भी नहीं सोचना। लेकिन हमें कभी भी कमेंट मानने का अर्थ है जब हम किसी को कुछ रिमार्क देते हैं, किसी पे व्यंग कसते हैं, या किसी को बिना पूछे ही परामर्श देते हैं, एडवाइस देते हैं, ये हमारे झूठे अहंकार का लक्षण है ना। अनसॉलिसिटेड एडवाइस इज अ साइन ऑफ फॉल्स ईगो। किसी को भी दे रहे हैं, कोई पकड़ है उसको बता दिया है ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, आपसे पूछ नहीं रहा, या किसी पे ऐसे व्यंग कस रहे हैं, तो ठीक नहीं है, वो एक निश्चित रूप से हमारे झूठे अहंकार का लक्षण है, एक प्रकार से एक वैष्णव अपराध है, तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए हमें। जैसे कई बार होता है कोई विदेश से सन्यासी आए, जो कभी कभी भारत में आते हैं, पंजाबी विभाग में आ गए, आपने आगे बैठ के बड़े उत्साहपूर्वक लेक्चर सुना, नोट्स बनाए, बाद में एक आपके साथी नहीं आ पाए लेक्चर में, तो हमारा उसके प्रति कोई करुणा का भाव नहीं होता, अरे प्रभु आपने लेक्चर मिस कर दिया, हमें यह भाव होता है अरे देखो मैंने अटेंड कर लिया आपने अटेंड नहीं किया, एक अचीवर की यू होते हैं, मैं अचीव कर लिया आप अचीव नहीं कर पा रहे, अरे सुना था लेक्चर, है ना, एक छोटा सा हमारा अंदर एक प्राइड, एक गर्व छिपा होता है, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। हम यहां देखते हैं कि राजा चित्रकेतु ने जो कमेंट दिया, एक व्यंग कसा भगवान शिव के प्रति, तो वो बहुत ही जिसे कहते हैं हर दृष्टि से बड़े आरामदायक स्थिति में थे, एक ऐसे विमान में थे जो कि भगवान विष्णु ने दिया, सुंदर सुंदर स्त्रियों के विषय घिरे हुए थे, और सभी तरह के सिद्ध लोक के निवासी, चरण लोक के निवासी उनका गुणगान कर रहे थे, उनकी इंद्रियां हृष्ट पुष्ट थी। तो ऐसी स्थिति में जब कोई आरामदायक स्थिति में होता है तो बहुत आसान होता है दूसरे ऊपर व्यंग कसना। तो कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे कुछ समय तक साधना अच्छी चल रही है और हम बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, गाड़ी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हम सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमें दिखना चाहिए भगवान की विशेष कृपा है, और जहां हमें लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं, हम ये हैं, हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, तभी हम किसी पे व्यंग कसते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है उसकी हिम्मत नहीं होती किसी पे व्यंग कसने की। लेकिन चित्रकेतु जी ने व्यंग कसा, ये तो भगवान की योजना थी और उनके पास कुछ योग्यता भी थी, उनको विमान भगवान ने दिया था, हमारे पास हो सकती बीएमडब्ल्यू हो लेकिन भगवान ने दी हुई, उनका जो विमान था दिव्यमान था, व्यक्तिगत रूप से भगवान ने दिया था, उनका जो विमान था दिव्यमान था, हमारी गाड़ी को चमकाने के लिए रोज व्यक्ति आता साफ करता है, और सुंदर सुंदर स्त्रियों से वो घिरे हुए थे, सब लोग गुणगान कर रहे थे, कुछ तो योग्यता थी। प्रभुपाद कहते हैं जो बद जीव है इज फॉल्सली पफ्ड अप, ऐसे ही झूठे नहीं वे फजूल पफ्ड अप है, कुछ है ही नहीं फिर भी उसको अहंकार है, और इसलिए वो सबको हिदायत देता फिरता है, सबको कुछ परामर्श देता फिरता है, और सोचता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तो बहुत सावधान हमें रहना चाहिए, साधु सावधान, भक्तों के बीच में व्यवहार करना सीखना बहुत आवश्यक है। अब ये मतलब नहीं है कि ठीक है जी भक्तों के बीच में तो हम सावधान हो जाएंगे, बाहर जाकर हम किसी को कुछ भी बोल दें। हम देखते हैं भागवतों के चौथे स्कंद में सुरुचि माता थी, उन्होंने ध्रुव बालक जो केवल 5 वर्ष का था उसको कितनी कड़वी बात सुनाई, उनका भाई उत्तम भगवान के अपने पिताजी गोद में बैठा था, तो ध्रुव भी बालक था, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे। तो माता सुरुचि ने क्या बोला कि खबरदार ये हिम्मत भी मत करना, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने पिता की गोद में बैठो तो तुम्हें शरीर त्यागना पड़ेगा और भगवान की बहुत विष्णु की पूजा करके मेरे घर से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम्हारे में योग्यता आएगी कि तुम अपने पिता की गोद को स्वीकार कर पाओगे। तो उस समय ध्रुव कोई भक्त नहीं थे, लेकिन बाद में जाकर ध्रुव बहुत बड़े भक्त बने। तो ये जो एक जीव अपराध क्या बन गया, वैष्णव अपराध बन गया। और जब भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिए तो भगवान ने घोषणा कर दी कि ध्रुव जो तुम्हारी भाई हैं उत्तम, उनका यक्ष वध कर देंगे और साथ में जो तुम्हारी माता सुरुचि है वो उसके विरह में पागल होकर जंगल में जाएगी और जंगल की दावाग्नि में ही वो जल के मर जाएगी। भगवान ने पहले से घोषणा कर दी, क्योंकि भगवान ने देखा कि उसने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, जो कि उस समय भक्त नहीं था। तो हमें किसी भी जीव को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी भी जीव को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इतना हमें सावधान रहना चाहिए। यह सावधानी हम स्वाभाविक रूप से बरतेंगे अगर हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है कि मैंने हर कार्य राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम की प्रसन्नता के लिए करना है। अगर ये हमें स्पष्ट है तो राधा राधिकारण कृष्ण बलराम से संबंधित जितने भी जीव हैं, जितने भी वैष्णव हैं, उनके प्रति हम सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। जब एक नई लड़की विवाह करके अपने ससुराल में जाती है तो ससुराल में उसको जेठ मिलते हैं, सास मिलती हैं, ससुर मिलते हैं, ननंद मिलते हैं, जेठानी मिलती हैं, देवरानी मिलती हैं, सबके साथ वो आदरपूर्वक व्यवहार क्यों करती है, क्योंकि सबके सब संबंधित है उसके पति के साथ। पति को प्रसन्न करने के लिए, पति से जुड़े हुए जितने भी रिश्तेदार हैं सबको वो सम्मान देती है। इसी ढंग से अगर हम भगवान को प्रसन्न रखना चाहते हैं, भगवान की तुष्टि के लिए हर कार्य करना चाहते हैं, तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि मेरे इस व्यवहार से, मेरे इस बातचीत से, मेरे इस व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति से क्या भगवान प्रसन्न हो रहे होंगे। व्यंग कसकर किसी पर हमें जो आनंद मिलता है ये तमोगुण का आनंद है और इसका हमें बहुत गहरी इसका हमें प्राइस देना पड़ता है। चित्रकेतु कहां विद्याधर के पति थे, असुर योनि में आ गए। इतना बड़ा फॉल डाउन देखिए, हालांकि उन्होंने साक्षात भगवान के भी दर्शन किए थे। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। एक व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति बहुत ही जगत में कोई किसी पे व्यंग कसे उसको बड़ा स्मार्ट बोला जाता है, यार अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता, वंडरफुल लेग पुलर, क्या लात खींचता है हरेक के, किसी को नहीं टिकने देता, कोई सामने आता काट सबको काटता रहता है, ये बड़ा स्मार्ट व्यक्ति है, सबकी छुट्टी कर देता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल उल्टा है, ये व्यक्ति सबसे खतरनाक है, ये भगवान की दृष्टि में प्रिय नहीं है, बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो इस प्रवृत्ति को हमें चेक करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए और जिस ढंग से हम थोड़ा सावधानी बरते और हम देख सकते हैं कि जो हमें उपहार प्राप्त हुआ है इसको हम पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रसंग में आगे हम देखेंगे कि किस ढंग से आगे माता पार्वती उनको श्राप देती है और किस विनम्रता के साथ राजा चित्रकेतु श्राप को स्वीकार करते हैं और हमें इसमें और बहुत कुछ बातें सीखने को मिलेंगे। हरे कृष्ण है क्वेश्चन और कमेंट्स।
थैंक यू भाई, हमने समझाई। लेकिन मुझे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि महाराज चित्रकेतु जो है उनको असुर योनि में आना पड़ा वैकुंठ वापस जाने के लिए, मैं समझना था इसमें कोई कारण था, क्योंकि महाराज चित्रकेतु वैसे भी शांति में रहते थे और वहां के नाम पर जब वहां पर दर्शन ले लिया तो उनको असुर योनि भी क्या आना पड़ा, और वैसे भी अगर कोई चीज जारी रखते शायद जीवन में पहुंच जाता।
आज पूरे जोर से इनका प्रश्न यह है कि राजा चित्रकेतु को असुर योनि में क्यों आना पड़ा वैकुंठ जाने के लिए, अच्छी साधना चल रही थी, भगवान को गुणगान कर रहे थे, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। शायद हमने क्लास के प्रारंभ में ही बताया था ये भगवान की योजना थी, भगवान चाहते थे, विष्णु चक्र ठाकुर बता रहे कि भगवान चाहते थे कि राजा चित्रकेतु जल्दी से जल्दी वैकुंठ धाम वापिस आए, स्पीड अप करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी वैकुंठ धाम वापिस आए, तो कई बार बहुत ही होगी आरामदायक स्थिति हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देती है, बहुत ही आरामदायक परिस्थिति थी उनके लिए। विद्याधर के पति थे, सब जगह गुणगान हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सेटल हो गए थे तो सेटल होना बड़ा खतरनाक है, सेटल नहीं होने दिया, भगवान ने तुरंत उनको असुरी में डाला, फटाफट वापस असहाय अवस्था में डाल दिया। तो भगवान की योजना थी।
हरे कृष्ण। तो जी जैसे आप बता रहे थे, जैसे जय विजय को जो हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ, चित्रकूट महाराज परीक्षित महाराज का, तो जैसे तो इससे जैसे हम भक्तों के जीवन में कष्ट आता, तो इसमें भी इसमें क्या हम भगवान के हाथ समझे, और ये क्या समझे कि भगवान मुझसे प्रसन्न है, कभी मेरे को दंड दे, ऐसे सोच सकते हैं हम लोग?
हाँ, अच्छा प्रश्न है। भक्तों के जीवन में हमारे कष्ट आता है तो क्या सोचना चाहिए कि
भगवान की इच्छा से हो रही है, लेकिन भगवान मेरे से प्रसन्न है, तो क्या सोच सकते हैं?
हाँ, जैसे ये प्रश्न कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बार बार हमारे मन में फिर आता है, क्योंकि ये बात स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है कि जो मुझे कष्ट आ रहे हैं इसमें भगवान की प्रसन्नता है। ये हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं इस बात को, और हमें इस बात को ऐसे देखना चाहिए कि जो भी मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है तो हमें देखना चाहिए निश्चित रूप से मुझसे कोई गलती हुई है, उसको मैं गलती को सुधार सकता हूँ, और ये भगवान की योजना भी है, भगवान चाहते हैं मैं स्थिति में रहूं, तो इसी का मैं सही उपयोग करूं भगवान की सेवा के लिए, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए ना? क्योंकि हमें इस बात को हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, जिस परिस्थिति में भी हूं ये भगवान की इच्छा है, निश्चित रूप से मेरे इस जन्म में या पूर्व जन्म में कुछ गलतियां ही होंगी, इसका ही परिणाम है।
ठीक है, इसी से संबंधित है कि हम कैसे पता कि अभी हम भगवान की सेवा करें भगवान हमसे प्रसन्न है, तो लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं होते, अब हम जब गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करते तो फिर सेवा को ठीक से नहीं करते, हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते, तो भगवान खुश है कि नहीं है, गुरु खुश है कि नहीं, पता कैसे रहेगा?
कंफ्यूजिंग क्वेश्चन।
अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग अगर अच्छी सेवा करें तो भगवान को प्रसन्नता के लिए हम लोग अच्छी सेवा करते हैं, तो भगवान को तो प्रसन्न करते हैं, लेकिन हमारे से कार्यकलापों के द्वारा के हो सकता है कि अगर भक्त को ये डाउट रहे कि गुरु प्रसन्न नहीं है, अगर ठीक है फिर हम गुरु के बाकी का पूरा का प्रयास करेंगे, उनका पीछे पीछे रहेंगे।
अच्छा ठीक है, सीधा प्रश्न है कि गुरु प्रसन्न है कि नहीं, कैसे मालूम चलेगा?
ये ना गुरु को प्रसन्न करने पता नहीं भगवान खुश हो रहे कि नहीं हो रहे।
तो सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि जब गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न होंगे, है ना? हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारे अभी इतनी स्थिति नहीं आई कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो राधे मुझे अपने दान दिखाएंगे, हमें बहुत खुश हो गया, थैंक यू बोलेंगे, हमें ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें तो ये देखना है कि गुरु प्रसन्न है कि नहीं, हमारे लिए यही मापदंड है। तो वो कैसे मालूम चलेगा? तो साफ साफ जाके हम पूछ लें, साफ साफ जाके पूछ लें, क्या आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं? और दूसरा, हम अपने अंदर के भाव को चेक करें, अपने इनर मोटिवेशन देखें कि मैंने किस भाव से सेवा की थी। अरे गुरु प्रसन्न तब होंगे जब आपने सेवा गुरु को प्रसन्न करने के लिए की होगी। हो सकता है हमारे भाव हो ही ना और फिर पूछे गुरु आप मुझसे प्रसन्न है। सबसे पहले तो मुझे अपने आप को चेक करना पड़ेगा, जो मैंने सेवा की थी क्या वास्तव में गुरु को समर्पित भी की थी? पहले तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, गुरु की सेवा के लिए हमने प्रसन्नता के लिए सेवा करनी चाहिए। दूसरा, फिर हम पूछ भी लें कि आप मुझे कुछ सुधार चाहते हैं, आप क्या मेरी सेवा से प्रसन्न है। वाई नॉट माता जी, वाई नॉट? गुरु से ही पूछ सकते हैं, वैष्णव से ही पूछ सकते हैं, जिनके अंतर्गत हम सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर बार हम गुरु की प्रतीक्षा करते रहेंगे, जिन गुरु के प्रतिनिधियों के अधीन होकर हम सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं या आप मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ये फीडबैक हमें लेने में हिम्मत होनी चाहिए। नहीं, आउटस्पोकन जिसमें क्या बहुत ही हृदय से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप बताइए मुझ में कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, बताइए मैं कैसे सेवा कर रही हूँ, बताइए आप क्या उससे प्रसन्न है या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ तब्दीली चाहते हैं, क्या दिक्कत है? साहस नहीं होता ना, क्योंकि ये बोलने के लिए प्रभुपाद जब भी अपने गुरु के पास जाते थे क्या बोलते थे? हाउ कैन आई सर्व यू? बहुत ये ये भी बहुत मुश्किल बात है माता जी, ये भी नहीं हम बोलते हैं, हम तो डरते हैं उनके सामने आते हैं, प्रणाम करके सब बढ़िया सब बढ़िया, वही रहिए वही रहिए बस, सब अच्छा है सब अच्छा महाराज सब अच्छा है, अरे कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन दे दी अच्छा है, सब अच्छा है सब बढ़िया चल रहा है, ये कहना भी बहुत बड़े कष्ट चाहिए, हाउ कैन आई सर्व यू, और उसके बाद पूछना कि आप मेरी सेवा संतुष्ट है कि नहीं, इसमें बहुत बड़े कष्ट चाहिए, हिम्मत चाहिए।
धन्यवाद सर। ऐसे ये लीला दिन जैसे आपने बताया, इसमें तीन तरीके होते हैं ऐसे 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 घटनाओं को देखने का, एक दिव्य एक आध्यात्मिक एक अनुभव के। तो दिव्य जैसे घटना बताई, जैसे दूसरा एक शायद ऐसे भी देखना चाहिए कि मतलब कि अपने जबान को लगाम ना देने से क्या होता है, कई बार ऐसे कुछ भी बोल दिया कि किसी भी किस माहौल में किसके सामने कहा, तो मतलब ये क्या प्रोजी मतलब डिवोटीज को, मतलब हम लोगों को हम कैसे इसको कैसे मतलब कैजुअल बिहेवियर को लेकिन कैजुअल एटीट्यूड में इसको पहुंचते
हैं। यस बिल्कुल, वही हम चर्चा कर रहे थे, आध्यात्मिक सर हो गया मैं इसमें क्या देखूं कि हम जैसे बिना जमान को लगाम दिए हम कुछ भी बोलेंगे बिना टाइम पे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, तो भी हमने बोला कि अपनी स्पॉन्टेनिटी को रोकना पड़ेगा। एक साधक को हमेशा अपने स्पॉन्टेनियस बिहेवियर को चेक करना चाहिए केयरफुल। यस
जी, जैसे आपने बताया कि डिवोटीज अगर मतलब हम किसी पे कमेंट करते हैं, पर अगर इसके उल्टा देखा जाए, अगर हमारे पे कोई कमेंट करता है तो हमें उस समय कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम भी स्पॉन्टेनियस समय इतने होते हैं कि वो कमेंट का जो रिएक्शन है वो कमेंट से ही जाता है। बिल्कुल
सही बात है, तो हमें शिव जी का कमेंट करना चाहिए, हंस देना चाहिए, शिव जी मुस्कुरा दिए खा रहे रिएक्ट दूसरे वैष्णव को करना चाहिए। पार्वती ने ठीक किया कि वो एक वैष्णव प्रति अपराध उन्होंने दिख पाए, शिव जी ने अपराध ले आएंगे, जितना मजे में कमेंट कर ले, हमें प्रयास ग्रहण भी सुनिश्चित सहिष्णुता, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें दिस इज द आइडियल स्टेट, उसकी तरफ हमें परफेक्शन की तरफ प्रयास करें।
अगर हम देखते हैं कि एक भक्त दूसरे भक्त पर कमेंट करें तो उस समय फिर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, तो उस समय रिएक्ट करें हम लोग,
उस समय भी अपनी स्थिति को देखते हुए, अगर आप इस स्थिति में है कि आप उसको चेक कर सकते हैं, आप उसको शाप दे सकते हैं आपको अधिकार है देने का, तो हम कर सकते हैं। अगर हम इस स्थिति में नहीं है तो इस देखते हैं कि दो साथ के भक्त मेरे साथ के भक्त आपस में सही व्यवहार नहीं करे, तो उसकी हायर अथॉरिटीज को बताए कि वो उसको एक्शन लें, देखें क्या हो रहा है। वैष्णव अपराध को सहन करना भी अपराध है, किसी दूसरे के प्रति अपराध को हम देख रहे हैं और कुछ एक्शन ना ले तो भी अपराध है।
तो अगर हम हायर अथॉरिटीज को बता रहे हैं तो हमारे प्रति वो अपराध कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हम जितना हमारे लिए पॉसिबल था बेस्ट
हमने किया। डेफिनेटली।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया था कि इस श्लोक से भी शिव जी जैसे माँ पार्वती को गोद में लेके और आलिंगन करे, तो इस घटना को कैसे समझा जाएगा? तो भगवान की लीला है ये तो मतलब है ही है बात, भगवान की योजना थी, लेकिन इसको हम आध्यात्मिक स्तर के पे और अधिभौतिक स्तर पे कैसे समझ पाएंगे?
तो आध्यात्मिक स्तर पर ये समझेगी हम कभी इसके बारे में नकल माने के सोचे भी ना, आध्यात्मिक स्तर ये है कि हम कभी भी सोचे भी ना, तेजी असम ना दोषाम, जो लोग बहुत उत्कृष्ट होते हैं उन्हें हम दोष में नहीं देख सकते और उनकी नकल भी नहीं मार सकते। जैसे उस दिन चिंता मित्र बता रहे थे हमें अधिकार होगा इस तरह से भागवत कथा करने का या भक्ति विषय लेने का अगर हम शिव जी की तरह जहर भी पी जाए, हमारे में इतनी योग्यता है तब हम ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा हम सोचे भी ना, ये आध्यात्मिक स्तर है। प्रभा लिख रहे हैं कि शिव जी का स्तर बिल्कुल अलग है, महान योगी में कुछ भी कर सकते हैं।
हरे कृष्ण जी, जैसे हम देखते हैं कि मैं जैसे मेरे जो भक्ति परीक्षा ग्रुप है और हम सब काफी मतलब माला कर लेते हैं, बुक रीडिंग भी करते हैं, क्लासेस में भी रेगुलरली आ जाते हैं और कृष्णा कॉन्शियसनेस जो छोटे छोटे हमें बताए जाते हैं वो कर लेते हैं, तो उसकी वजह से एक बहुत ही हम्बल एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है, एक नेचुरली हम हम्बल बन जाते हैं, तो उस वजह से जब हम किसी के अगेंस्ट ऑफेंस करते हैं तो वो बताते ही हैं और हमें एकदम नेचुरली बिहेव करते हैं, हमारे मेंटर्स के साथ भी हम करते हैं, बहुत बार हम उनसे ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करते लेकिन वो कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं करते और हमें कुछ पता ही नहीं लगता कि हमने कर दिया है। और फिर जिस बाकी यहाँ से महाराज को पता लग गया कि उन्होंने ऑफेंस करा है, और मतलब रूप गोस्वामी को भी पता लग गया था कि उनसे ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन हमें तो हम्बल नेचर में से पता ही नहीं लगता कि हमने ऑफेंस करा भी या नहीं करा। और फिर महीना महीनों बाद जाके मतलब ऐसा मेरा हुआ।
बात सही कह रहे हैं, जितना हमारी चेतना रिफाइन होती जाएगी, हमारी कॉन्शियसनेस शुद्ध होती जाएगी, उतना जल्दी हमें मालूम चल जाएगा कि हमसे कुछ अपराध हुआ है। जितनी हमारी चेतना स्थूल स्तर पे है उतना हम अपराध करेंगे पता भी नहीं चलेगा हम अपराध कर रहे हैं। ये हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करता है कितनी उत्कृष्ट है वो, है ना। तो इसलिए ज्यादा से अच्छे ढंग से हम जप करेंगे, अच्छे ढंग से श्रवण करेंगे, तो हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, तब हमें मालूम चलेगा अरे मैंने सही व्यवहार नहीं किया, हम उतने सेंसिटिव होंगे।
प्रभु जी यही दिक्कत आती है, मतलब जो पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस और गोल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एक जैसा ही लगता है। कई बार पाथ का सोल्यूशन आप वही बताते हो जो मतलब अभी आप कह रहे हो कि ऑफेंस पकड़ने के लिए मुझे अपने को अपनी चेतना इंक्रीज करनी पड़ी, बट इंक्रीज करने के लिए मुझे पता लगना है। तो पाथ और गोल में फर्क ही नहीं पता लगता, एक पाथ और गोल में फर्क होता है कि पाथ इज अ लिटिल सिंपलर, बट
नहीं, ये एब्सोल्यूट मार्ग है, ये इसकी खासियत है भक्ति की। पाथ और गोल दोनों एक ही है, पाथ और गोल दोनों एक ही है, और आप अगर सही ढंग से जप कर रहे हैं तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि लीनियर नहीं है, इसके बाद ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, है ना। आप फर्स्ट क्लास में फिर सेकेंड क्लास में फिर ये, पहले आप चेतना शुद्ध कर लो चलो अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि धीरे धीरे आप प्रयास करते रहिए, जैसे जैसे चेतना शुद्ध होती जाएगी आप और सेंसिटिव होते जाएंगे। लेकिन श्रवण करके हम आध्यात्मिक बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, श्रवण करते करते हमारी बुद्धि आध्यात्मिक होगी, और फिर हम अपने मन को नियंत्रण करके मन के अनुसार व्यवहार न करके शास्त्र के अनुसार व्यवहार करेंगे, तो इस ढंग से शुद्धिकरण होते हैं, दोनों साथ साथ चलते
हैं। तो एक ऐसा भी होता है जैसे हम लेक्चर्स सुन लेते हैं और ऐसा बताया जाता है कि अगर आप उस नॉलेज को यूज नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपके डमनेस और बोरनेस डेवलप होती रहेगी अगर आप उसको यूज नहीं करोगे, तो ऐसा जब हो जाए तो इसको काउंटर कैसे करा जाए। जैसे लेक्चर आप अटेंड कर जा रहे हो बट आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो एक टाइम आता है यार छोड़ यार लेक्चर अटेंड करने से होता भी क्या है, फिर वो डमनेस बोरनेस आ जाती है, तो ऐसे केस में फिर क्या करा जाए।
दोबारा से अपने कंप्यूटर लगे बोले डू वाइल लूप होता है, दोबारा से उसी लूप में चले जाओ, करते रहो, ये तो कई जीवन का प्रयास है ना। उत्साह निश्चय धैर्य उत्साह मत कोई है कभी भी, ठीक है ना। इसलिए बहुत आध्यात्मिक जीवन में बहुत वैरायटी है, बहुत विविधता है, तो कई बार ये वैरायटी नहीं होती हमारे जीवन में, इसलिए हम थोड़ी सी बोर्डम महसूस करते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं है, ठीक है। हम सब यहीं पे विराम देंगे, बाद में व्यक्तिगत सर प्रश्न पूछना। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर श्रीमद भागवतम की, नेता गौर प्रेमानंद।